हमारे सामने किरण बहन हैं, हम किरण बहन का भी वेलकम करते हैं। सभी तालियों से किरण बहन का वेलकम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन किरण बहन लेने वाले हैं, जर्नी विद हार्मनी। आप बाल्यकाल से ही इस संस्था से जुड़े हैं, पिछले 20 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने बीए विद लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और आपको स्पिरिचुअल आर्टिकल्स लिखने का बहुत शौक है और आपकी कई आर्टिकल्स से संस्था की जो मंथली मैगजीन है ज्ञानामृत उसमें पब्लिश भी होते हैं। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स पर लेक्चर्स करते हैं और क्रिएटिव रीति से बच्चों के समर कैंप भी कराते हैं। तो हमें बहुत ही खुशी है कि हमारा ये वेरी फर्स्ट सेशन कराने के किरण बहन हमारे सामने हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेनू ऑर्डर करने से पहले उन्हें स्टार्टर दिया जाता है और स्टार्टर बहुत माउथ वाटरिंग होता है जो एपिटाइट को इंक्रीज करता है। तो ये भी हमारा एक स्टार्टर सेशन है जिसे हमारी स्पिरिचुअलिटी की जिज्ञासा, ये एपिटाइट भी बहुत बढ़ने वाला है। तो हम आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते, अब हम सुनेंगे किरण बहन से।
ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? तो आप सभी का इस परमात्मा के घर में, इस बेहद घर में स्वागत है। आप सभी पहली बार आए होंगे यहाँ पर और अलग अलग भारतवर्ष से, अलग अलग शहरों से आप सभी पधारे हैं। तो इस प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो जैसे सारिका बेन ने कहा कि ये स्टार्टर है और आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग में आए हैं, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट विंग में हम क्या करेंगे। लेकिन ये जो विंग है, ये ऐसा विंग है कि हर मनुष्य इस विंग से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम सभी एक यात्रा पर हैं, एक जर्नी में जुड़े हुए हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनल यात्रा भी चल रही है और सबकी एक दूसरे के साथ भी चल रही है। अब ये जो यात्रा है जिसको हम कहते हैं जीवन रूपी यात्रा, बस ट्रैवलिंग की यात्रा तो हम सभी करते ही है, जिसको हम कहेंगे फिजिकल यात्रा। परंतु जीवन में भी हम सभी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। यात्रा की एक शुरुआत होती है और एक डेस्टिनेशन, मंजिल होती है। जीवन रूपी यात्रा में भी ऐसा है। चूंकि हम कहते हैं कि जन्म हमारी शुरुआत है, वो तो है ही, परंतु जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो हम कई नई यात्राएं भी शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं गोल रखते हैं, कोई ना कोई हम लक्ष्य रखते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम रोज सवेरे उठ करके एक आशा की किरण लेकर के हम उस पर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। आप सभी ने भी कोई ना कोई लक्ष्य रखा होगा जीवन में। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसका लक्ष्य होता है मुझे एग्जाम में पास हो जाना है। फिर थोड़े बड़े हुए तो लक्ष्य रहता है अच्छी नौकरी चाहिए। फिर लक्ष्य रहता है अभी प्रमोशन चाहिए। तो इसमें भी जो व्यक्ति अपनी जो पर्सनल जर्नी जी रहा है कोई ना कोई टारगेट लक्ष्य बना करके, उसके लिए वो खुद मेहनत करता है तब तक ठीक है, परंतु जैसे ही हम किसी और को देखना शुरू करते हैं इस जर्नी में भी, तो क्या हो जाता है? जैसे मान लो रोड की ट्रैवलिंग में भी, उस जर्नी में भी, मान लो हम बाय रोड हम जर्नी कर रहे हैं, तो जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी जर्नी बहुत पीसफुल हो, सेफ हो और हैप्पी हो। चाहते हैं ना सभी ये? जीवन रूपी यात्रा में भी हमें यही चाहिए होता है। हम वो रोड की ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंचने के बाद मैं खुश होऊंगा, तब तक सीरियस, ऐसा कोई चाहता है? चाहे ट्रेन चाहे फ्लाइट, है ना, कोई भी जर्नी में हम क्या सोचते हैं, है ना, उसमें भी दोस्तों के साथ, है ना, ऐसे कुछ लोगों के साथ हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कहते अरे बहुत मजा आएगा इनके साथ है। तो इसमें बात ये भी है कि क्यों ना हम ऐसा बने जो लोगों को लगे हाँ इनके साथ है अभी मजा आएगा, अभी हमारी जर्नी बहुत हैप्पी हो जाएगी। तो उस यात्रा में सपोज हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, है ना, कार में बैठे और काफी सारी चीजों का भी हम उसमें ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना पीना लेंगे, फिर कई बार सोचते फलाने सॉन्ग सुनेंगे, है ना, ऐसा करेंगे, इस तरह की बातें हम निकालते हैं, इस तरह के टॉपिक निकालते हैं जिससे हमें बहुत खुशी मिले, है ना, कोई सीरियस बात भी करें या कहते अभी नहीं बाद में, ये समय है ना एंजॉय करने का है। तो उस छोटी सी यात्रा में हम काफी सारा ध्यान रखते हैं और उसमें भी हम चार पहलुओं का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। हर एक जर्नी में हार्मनी बहुत जरूरी है, चार बातों की हार्मनी जरूरी है, चारों ही बातों का सामंजस्य, चार पहलुओं को हम चेक करते हैं, देखते हैं। ट्रैवलिंग के पहले अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, बीमारी में वहां जाने का कोई मजा नहीं आएगा। तो फिजिकल एस्पेक्ट को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा, हमारा लोगों के साथ का व्यवहार, सोशल एस्पेक्ट को भी हम ध्यान में रखते हैं। कई बार नहीं, किसी के साथ बनती नहीं है और उसी के साथ हमारी सीट आ गई है तो भी सोचते हैं अभी मजा नहीं आएगा। तो ये भी देखा जाता है सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू को, कि हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। तीसरा, हम देखते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, परंतु लोगों को पता नहीं है कि स्पिरिचुअल पहलू हम कैसे उसको बैलेंस करें, किस तरह से हम रहे जो कहा जाए कि हाँ हम स्पिरिचुअल है। कई बार तो हम सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लिया हम स्पिरिचुअल हो गए। मेरा एक प्रश्न है कि क्या पूजा पाठ करना अच्छा है? बहुत अच्छी बात है, दिन की शुरुआत हम इस तरह से करते हैं, बहुत अच्छा है। मान लो किसी ने टीका लगा दिया, रोज टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं और उसमें भी उन्होंने गुस्सा कर लिया, उनका नेचर है गुस्से वाला, तो हम उनको स्पिरिचुअल पर्सन कहेंगे, कह सकते हैं? तो ऐसे कुछ बातों का इस जीवन रूपी यात्रा में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसका हमें ध्यान रखना जरूरी है तो हमारी ये जीवन रूपी यात्रा बहुत पीसफुल, सेफ और हैप्पीएस्ट हो सकती है, हो जाएगी। और हर यात्रा की शुरुआत हम पहले कदम से शुरू करते हैं। हर यात्रा की शुरुआत, कोई ना कोई जो गोल रखा है, लक्ष्य रखा है, कोई ना कोई जीवन में बिजनेस स्टार्ट किया, या कई बार संबंधों को संभालने की भी एक हमारी यात्रा कहेंगे। सोशल एस्पेक्ट के जो बारे में हम बात करेंगे आगे, तो ये सारी जो यात्राएं हैं उसका पहला कदम है, और वो पहला कदम है होप, आशा, एक नई उम्मीद। और रोज सवेरे उठ करके, जैसे कहा जाता है ना कि आशा की एक किरण भी है ना, वो 99 दरवाजे नहीं खुले, लेकिन आशा की एक किरण से वो शायद 100वां दरवाजा खुल जाए। काफी लोगों ने संसार में जो यात्रा की, उन्होंने इसी राह पर चले, उस एक किरण पर, एक आशा की किरण पर, और देखा जाए तो उन्होंने पीछे वालों के लिए बहुत सुंदर रास्ते बना दिए, हाईवेज बना दिए। अगर मान लो थॉमस एडिसन ने ये नहीं सोचा होता कि मैं बल्ब बनाऊं या ऐसी कोई रोशनी की चीज बनाऊं, अगर वो आशा नहीं रखी होती तो आज हम इस रोशनी में बैठे होते? उनकी एक उम्मीद से आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। तो हमारी भी छोटी छोटी जो जर्नी है उसमें भी जितना हम इस एक कदम से शुरू करते हैं, कहीं से तो शुरू करना होगा। तो वहां जो उम्मीद से हम शुरू करते हैं तो मंजिल अवश्य मिलती ही है। कुछ चीजें हमारी ऐसी पर्सनल होती है, हम सोचते हैं मेरे से पहले तो किसी ने शुरू नहीं किया है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो आशा की एक किरण हमें ये राह दिखाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद को ही वो मोटिवेशन देना, हम कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। तो जैसे कहा कि जीवन में, ये जीवन रूपी यात्रा में भी चार पहलुओं की आवश्यकता है। जैसे एक गिटार होता है, गिटार में चार तार होती है, चारों ही यूनिक है, चारों में से एक अलग अलग यूनिक सुर निकलता है, परंतु चारों ही जब साथ में बजती है तो बहुत सुंदर संगीत क्रिएट होता है। कोई भी चीज के भी देखो चार आधार होते हैं, और चारों ही आधार एक समान होने चाहिए और सेम लेवल पर मजबूत भी होने चाहिए। जैसे एक चेयर ले लो, एक सोफा है या एक टेबल है, चार पैर होते हैं और चारों ही एक समान होने चाहिए। अगर सपोज एक चेयर है, उसके तीन पैर बराबर है, एक लेवल पर है, और एक पैर छोटा है, इतना ही छोटा सा है, तो उस पर बैठेंगे आप? जगह नहीं है, सारी चेयर फुल हो गई है और एक ही चेयर बची है, और ऐसे वाले आप उस पर बैठेंगे? सोचेंगे बैठ तो जाएंगे लेकिन बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसे हिलते डुलते रहेंगे, बैठने का मजा भी नहीं आएगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, जो सुनने के लिए बैठे वहां एकाग्रता नहीं रहेगी, बार बार वहां ध्यान जाएगा, ये छोटा हिल रहा है। तो चारों ही पैर एक समान चाहिए। उसी तरह हमारी लाइफ में भी ये जो चार पहलू है वो एक समान चाहिए और मजबूत चाहिए। पहला है फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकली फिट होना जरूरी है कि नहीं, जीवन जीने का मजा कब है। जैसे हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल भी है ना, उनका पैर काटना पड़ा, हाथ काटना पड़ा, तो उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत एक अलग तरीके से और आगे ले गए। उन्होंने उसमें कोई लाइफ जीना कोई छोड़ नहीं दिया या कोई साधारण जीवन नहीं जीने लगे, और ही उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को और ही एक नया गोल दिया और उसको अचीव भी किया। माउंट एवरेस्ट भी चढ़ गए एक पैर पे। तो जहां स्थूल बात है, फिजिकली भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो भी लोग अपनी लाइफ की जर्नी को स्टॉप नहीं कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक नई दिशा दे देते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट, ये पहलू बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। हमें जीवन में कई जगह पर बौद्धिक रीति से कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उसमें हम अगर दूसरों का हम आधार लेते हैं, कई बार नहीं हम किसी को पूछते आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें मैं क्या करूं आप बताओ ना। अभी हम अपने जीवन को, खुद को हम खुद अच्छे से पहचानते हैं या दूसरे पहचानेंगे, क्या कहेंगे? आप खुद को पहचानते हो उससे ज्यादा आपके माता पिता आपको पहचानते हैं, या आपके दोस्त आपको सबसे ज्यादा अच्छे से कौन पहचानता है? हम खुद जितना हम जानते हैं खुद को, उतना और कोई नहीं जान सकता। तो बौद्धिक लेवल पर भी जो डिसीजन लेने हैं वो खुद ही खुद के हम ले सकते हैं और वो बेस्ट होते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू, लोगों के साथ का हमारा व्यवहार, हमारा सामंजस्य कैसा है, लोगों के साथ हारमनी से हम जी रहे हैं या जी पाते हैं। एक ही घर में चार लोग हैं, एक यहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे। सामाजिक मना बाहर, घर के बाहर निकलो वहां का, लेकिन आज घर के अंदर ही सामंजस्य है आपस में चार लोगों का भी, वो भी चेक करना जरूरी है। तो जीवन रूपी यात्रा बहुत स्मूथ आगे बढ़ सकती है और तब उसमें हैप्पीनेस होगी। चौथा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो आप जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। इस 3 दिन में आप बहुत कुछ बटोर सकते हो, बहुत कुछ अपने अंदर ले सकते हो, भर सकते हो, तो कुछ भी मिस नहीं करना लेने में, भरने में। बहुत ओपन माइंड होकर के ये 3 दिन आपको यहाँ पर बैठना है और जितना मिल सके पूरा बटोर लेना है, पूरा भरपूर होकर के जाना है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जैसे जैसे वो यात्रा करते हैं तो हम अलग अलग रास्तों पर अलग अलग प्रकार के साइन बोर्ड देखते हैं। तो ये साइन बोर्ड हमारे जीवन में, जीवन रूपी यात्रा में अगर ये साइन बोर्ड को यूज करे तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? ऐसे कोई साइन बोर्ड है जो हम जीवन में, अगर हम इस जीवन रूपी यात्रा के लेवल पर उसको यूज करें तो हमारी जीवन एक अलग तरीके से हो जाएगी। जैसे किसी का पैर काटना पड़ा है तो वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई है कि जैसे ये साइन बोर्ड क्या दिखा रहा है, कौन कौन गाड़ी चलाते हैं, हाथ खड़ा करें। अच्छा, तो आज आपकी ये भी एग्जाम हो जाएगी। ये एग्जाम आप सभी ने लाइसेंस लेने के टाइम पे दी होगी, राइट? तो ये साइन बोर्ड क्या दिखा रहा है, कौन बताएंगे? आगे स्लोप है। और देखो, कोई भी साइन बोर्ड जो आगे होने वाला है, आगे जिस तरीके का माहौल है, रास्ता है, वो पहले से दिखा दिया जाता है। ये एक रोड की एक ये नियम है। तो ये साइन बोर्ड दिखा रहा है कि आगे रास्ता स्लोप वाला है। तो कई बार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इस स्लोप पर जब हम जाते हैं तो चढ़ना पड़ता है, रिटर्न आने के टाइम उतरना होता है। और जब चढ़ना होता है तभी गाड़ी का फ्यूल ज्यादा लगता है, ज्यादा रेस देनी पड़ती है और रास्ता कम तय होता है, डिस्टेंस कम तय होता है, फ्यूल ज्यादा यूज होता है। कई बार हमें जीवन में भी ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है, वो मेहनत करना छोड़ दे रहे, छोड़ सकते हैं, जाने तो करना ही नहीं है, जीवन स्टार्ट किया है तो जीना तो पड़ेगा और जो हमने गोल रखे हैं वो अचीव करने में ये सारी बातें आती है। तो उस समय क्या सोचते हो आप सभी, मेहनत ज्यादा लग रही है लेकिन अचीवमेंट कम दिख रही है, उस समय क्या सोचते हो आप सभी? और हम सभी के साथ ये लाइफ में हो चुका है, होता भी रहता है और आगे भी होगा। तो अब तक जो हुआ उस समय आपने क्या सोचा जी, आगे बढ़ेंगे। मेहनत ज्यादा है और प्राप्ति कम है, कुछ हासिल कम हो रहा है, उस समय पर ये सोच बहुत अच्छी रहती है कि चलो मुझे सीखने को मिला और मेरी ये मेहनत आगे चल के मेरी मेहनत के संस्कार बन गए। लाइफ में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती है। अगर अभी हमें ज्यादा मेहनत लग रही है तो आगे चल के कम मेहनत में काफी सारी चीजें हासिल कर सकेंगे क्योंकि हमारे वो संस्कार बन गए मेहनत के। उस मेहनत से ही हम आगे चल करके काफी सारी बातों के हम अनुभवी भी बन सकते हैं। तो भले इस समय पर शुरुआत में अगर हमें लगे कि कुछ दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो आगे चल के काफी सारे अलग अलग लक्ष्य में अलग अलग रास्तों पर हमें वो रास्ते इजी लगेंगे। जो रोज स्लोप वाला रास्ता चढ़ते हैं ना, कितने मेरी गाड़ी को भी आदत हो गई है अभी ये रास्ते की जी जी यस जी जी। वैसे भी कहा जाता है कि आपको जो रोल मिला है, आपको जो लाइफ में रोल मिला है, टास्क मिला है, डिफिकल्ट है ना, तो ये समझना कि आपके सिवा ये रोल दूसरा कोई अच्छे से प्ले नहीं कर सकता, आप ही इसको अच्छे से प्ले कर सकते हो, इसीलिए भगवान ने ये रोल आपको दिया। कई बार कईयों के पेरेंट्स दोनों पैरालिसिस, किसी का बच्चा पैरालिसिस, किसी का क्या, किसी का क्या, तो हर एक की लाइफ देखो कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, फिर भी वो लोग देखो ज्यादा खुश रहते हैं। मैंने देखा है, वो नॉर्मल व्यक्ति से वो लोग ज्यादा खुश, क्योंकि वो उनका फिर गोल हो जाता है, बस खुश रहना है, खुश होकर के काम करना है। ऐसा नहीं कि खुशी हमारी मंजिल हो, खुशी हमारी डेस्टिनेशन हो। कहते हैं कि ये काम हो जाए फिर मैं खुश हूं, कि ये काम खुशी से करूं, दोनों में से बेटर कौन सा है? वो काम हो जाए फिर मैं खुश रहूं, कि खुश रहकर के वो काम की शुरुआत ही मैं करूं खुशी से। इसलिए कहते हैं ना कि अगर खुशी से शुरुआत करते हैं तो हाफ डन है ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो शुभ शुरुआत खुशी से शुरुआत करते हैं तो आधी सफलता वहीं पे मिल जाती है, बिकॉज आप खुश हो तो खुशी वाली सफलता तो मिल गई ना शुरुआत में ही, है ना। और संसार में हर चीज हर एक के पास सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल है? दो हाथ पे रख कर सब ठीक हो, बहुत बड़ा बंगलो भी हो, चार गाड़ियां भी नीचे खड़ी हो, मेरे रिलेशन भी सबके साथ मस्त हो, ऐसा पॉसिबल है? सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फिर करेंगे क्या हम? तो ये जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं ना, वो भी जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? अगर लाइफ ऐसे स्मूथली चले, है ना, सीधा सीधा ही प्लेन रोड, आप सभी मूवी देखते हो, बाहर जाते होंगे मूवी देखने, जाते हो थिएटर में? तो जब मूवी देखने जाते हैं और उसमें एक फैमिली दिखाई स्टार्टिंग में, फिर दूसरी फैमिली दिखाई, फिर थोड़े और लोग दिखाए, फिर सब मजे से कर रह रहे हैं प्यार से, फिर हीरो की एंट्री हुई, फिर उसको जो चाहिए था वो मिल गया और मूवी पूरी हो गई। फिर आप घर आते हो, फिर कोई आपको पूछता है कैसी थी मूवी, तो आप क्या बताएंगे? अरे बहुत अच्छी थी, सब बराबर परफेक्ट चला, एकदम स्मूथली, मजा आया, ऐसा क्या बोलते हैं? बिल्कुल मजा नहीं आया, कुछ फाइटिंग ही नहीं थी, विलन ही नहीं था, कहते ये क्या सब सीधा सीधा पूरी भी हो गई, कब पूरी हुई हमको तो पता ही नहीं चला, ऐसे सोचते बोलते हैं कि नहीं? अगर कुछ उतार चढ़ाव हो, दो चार बार फाइटिंग हो, फिर क्लाइमेक्स, फिर सारे सीक्रेट, है ना, सस्पेंस खुलते है, फिर मजा आता है। तो जहां मेहनत ज्यादा लगे ना लाइफ में, समझना आगे कुछ सस्पेंस है मेरे लिए, वो जब खुलेगा ना तो बहुत मजा आएगा। परमात्मा हमें यहाँ पर सिखाते हैं कि समय ना एक पर्दा भी है, और जब हम वो पास करते जाते हैं, जब वो पर्दा खुलता है, तब हमें पता चलता है अच्छा मेरे लिए ये चीज अच्छी यहाँ पे छुपी थी जो मुझे पता ही नहीं थी, पर्दा लगा था, और हम मेहनत करते करते, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी तो हम गुस्सा भी हो रहे थे, भगवान में भी गुस्सा हो रहे थे, भगवान को ब्लेम भी कर रहे थे, मेरा ही नसीब ऐसा बनाया, मेरे भाग्य में ही ये सब लिखा है। क्या भगवान पर ब्लेम करने से लाइफ चेंज हो सकती है? कि भगवान को थैंक्स करने से शायद हो सकती है, क्या मानते हो? सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही है, लेकिन जो आज रोल मॉडल बन चुके हैं, उनकी लाइफ कोई स्मूथ नहीं थी, हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, और शायद इसीलिए उन लोग ने वो सब अचीव कर लिया, वो अचीव करने की जिद पे उतर आए वो लोग, और इसलिए दुनिया के लिए वो हाईवेज भी बना के गए, बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करके रोल मॉडल बन गए। तो जहां पर मेहनत ज्यादा लगे तो समझना मेरे लिए कुछ अच्छा आगे छिपा हुआ है। एक सुंदर स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति था, तो वो जैसे ही एक ब्रिज था, वो ब्रिज पे उसने चलना शुरू किया तो एक साइड से वो ब्रिज टूट गया। और ब्रिज ऐसा होता है, वो टूट गया तो व्यक्ति, वो ब्रिज पूरा लटक रहा है खाई के बीच में और वो व्यक्ति उस पे लटका है और उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़ा एक दो संकल्प विचार ऐसे आए, ब्लेम किया, फिर सोचा कि मैं भगवान मुझे बचाओ, कैसे भी करके आपको बचाना है, मैंने बहुत आपके लिए पूजा पाठ किया है, ये किया है। तो यहाँ पर ये थॉट भी थोड़ा रॉन्ग हो जाता है, हम पूजा पाठ भगवान के लिए करते हैं या खुद के लिए? तो कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में क्या सोचने लग जाते हैं, मैंने भगवान के लिए ये किया वो किया, हम अपने लिए करते हैं। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि ब्रिज की दूसरी साइड जो बंधी हुई थी वहां पर, वो साइड पे भगवान खड़े हैं। तो ये बंदा खुश तो हो गया कि अरे भगवान आ गए, अब मुझे बचाएंगे, वहां ही खड़े हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्ला के बुलाने लगा भगवान को कि भगवान नजदीक आओ, थोड़ा नीचे आओ, मैं यहाँ लटका हूँ, देखो यहाँ यहाँ आप आओ, मुझे बचाओ। तो भगवान की नजर गई वहां पर, भगवान आ नहीं रहे हैं। आप होते उस जगह तो क्या सोचते? भगवान वहां पे आ भी गए, ब्रिज की दूसरी साइड खड़े भी हैं, आपको देख भी लिया, आप बुला भी रहे हो जोर जोर से, पर भगवान आ नहीं रहे, तब आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? देखो ना कैसे भगवान आ भी नहीं रहे, यहां तक आ गए और अभी मुझे बचाने नहीं आ रहे, सोचेंगे कि नहीं? ऐसा सोचेंगे? तो इसी सोच को हमें चेंज करना है इस 3 दिन में। तो उसने भी ऐसे ही सोचा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है ना, दूसरों पर ब्लेम करना, भगवान पर ब्लेम करना। तो उसने तो शुरू हो गया और गुस्सा होने लगा भगवान पे, आप कैसे भगवान हो, आ भी नहीं रहे हो। तो फिर सोचा कि छोड़ो, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। फिर वो अपनी मेहनत से धीरे धीरे चढ़ता गया, ऐसे पकड़ा ऐसे पकड़ा, ऐसे करते करते वो ब्रिज के ऊपर तक चढ़ गया, जो नॉर्मल रास्ता था वहां तक पहुंच गया। फिर भगवान से तो वो गुस्सा था, बात भी नहीं किया उसने भगवान से, भगवान के नजदीक आने के बाद भी वो मस्त आगे जाके रोड के खड़ा हो गया व्यक्ति। फिर भगवान भी उसके पास आए तो ठक करके ब्रिज गिरा, दूसरा साइड भी जो था, भगवान जैसे ही वो व्यक्ति के पास गया वो ठक करके ब्रिज गिरा पूरा नीचे खाई में। क्या समझा? भगवान दूसरी साइड खड़े थे, आपके लिए ही खड़े थे, ब्रिज पकड़ के खड़े थे और हम समझ ही नहीं पा रहे थे, हम भगवान पे गुस्सा हो रहे थे कि कैसा भगवान है, आ ही नहीं रहे, मुझे बचा नहीं रहे हैं। और दूसरी बात क्या हुई, उसकी स्टेमिना बढ़ गई, उसने फिजिकली मेहनत कर करके चढ़ा ना वो व्यक्ति। तो जहां ज्यादा मेहनत है भगवान पे फेथ रखो, पूरा 100% फेथ रखो, ब्लेम नहीं करो, पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि आगे भगवान हमारे लिए दूसरी चीज पकड़ के खड़ा है ना, वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा कि ये है भगवान का प्यार, ये है भगवान का सपोर्ट हमारे लिए, शक्ति भी बढ़ गई और वहां तक पहुंचा भी दिया। इजीली पहुंचते ना तो भगवान का इतना थैंक्स नहीं कर पाते थे, ज्यादा मेहनत करके कहीं पहुंचते हैं ना तो ज्यादा थैंक्स निकलता है भगवान के प्रति, निकलता है कि नहीं? ये बात राइट है कि नहीं? अब इसी में दूसरी बात होती है कि जब हम उतरते हैं स्लोप, तभी फ्यूल कम लगता है, इजीली उतर पाते हैं, रेस भी नहीं देना पड़ता है, एक्सीलेटर नहीं देना पड़ता है। तो उसी तरह लाइफ में भी कई बार कुछ चीजें हमें इजीली प्राप्त हो जाती है, तो उसमें हमें इसमें ब्रेक पावरफुल चाहिए, है ना, एक्सीलेटर नहीं लेकिन रेस पे नहीं लेकिन ब्रेक पे पैर अच्छे से होना चाहिए, और बहुत ध्यान से एकाग्रता से वो श्लोक उतरना पड़ता है। तो लाइफ में भी जहां पर हमें कोई चीजें इजीली प्राप्त हो रही है, तो हमें खुद पे एक ठहराव, एक कंट्रोल, एक पेशेंस होना चाहिए कि कहीं हम अपनी एकाग्रता खो ना दें, कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। ये हमें कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ये ब्रेक हमारी बहुत पावरफुल चाहिए। और हो सकता है अभी जो हमें इजीली मिल रहा है ना, वो पहले के हमारे हार्ड वर्क का वो रिजल्ट होगा। और ऐसी चीजों में खास हम सभी ये भी बोलते हैं, शायद सोचते भी है, सबसे पहले तो सोच चलती है कि जरूर ये मेरे कोई पुण्य कर्म का फल है, तो कभी तो कोई पुण्य किया होगा तभी आपको इजीली मिल रहा है। लेकिन उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना, है ना, उसमें हमें बहुत धैर्यता पूर्वक ध्यान देना है ना। इसलिए कहते हैं ना कि जब समय अच्छा चल रहा हो हमारा, तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, और जब बुरा चल रहा हो तो भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो ये जो एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट, जीवन में हेल्थ, इसी को ही तो जीवन कहा जाता है ना। जीवन माना सिर्फ बंगला, गाड़ी, मोटर या लोग, नहीं, सबसे पहला हमारा शरीर। कहते हैं ना, कोई साथ नहीं देगा लेकिन आपका शरीर आपको साथ देगा हर परिस्थिति में। तो हमें हमारे शरीर को भी कितना ठीक रखना जरूरी है, और ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो साइन बोर्ड है, ये हमें लाइफ में अगर यूज करना है, वो भी फिजिकल एस्पेक्ट के लिए, तो ये कहता है नो एंट्री। ये साइन बोर्ड ये है कि आगे आप आगे रास्ते पर जाना नहीं है। तो जीवन में भी हमें अल्कोहल को नो एंट्री का साइन बोर्ड दिखा देना है, क्योंकि अगर ये हमने कर लिया, फिर कहते हैं इसमें ना यू टर्न नहीं है। बहुत सारी शराब पी के लंग्स खराब हो गए, डैमेज हो गए, फिर रिपेयर हो सकते हैं, हो सकते हैं रिपेयर, लीवर खराब हो गया, सीधा नया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर उसी लीवर को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसमें यू टर्न नहीं है। तो जहां जिस रास्ते पर यू टर्न नहीं होता है, वहां पहले से ही ध्यान देना पड़ता है, बहुत अलर्टनेस से गाड़ी चलानी पड़ती है। और आजकल कलयुग में ये चीजें लोग अपनी शान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, है ना, इसलिए कहते हैं कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। इन चीजों के बगैर क्या आपकी शान नहीं हो सकती? आप जरा सोचिए, खुद की रेपुटेशन ऊंची बनाने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? ये चीजें रेपुटेशन के लिए तो हमारा व्यवहार, हमारी बौद्धिकता, हम कौन सी सोच से जी रहे हैं, लोगों के साथ का हमारा व्यवहार, लोगों को हम कितनी मदद कर रहे हैं, उस आधार पर हमारी शान होगी, नाम मान शान। इन चीजों से तो नाम मान शान पूरा मिट्टी में मिल जाता है, और इससे ना केवल फिजिकली नुकसान है ना, लोग हमसे दूर होते जाएंगे, हमारे परिवार वाले ही दूर होते जाएंगे, फाइनेंशियली भी कितना लॉस है ना, फिजिकली लॉस, सोशली लॉस और फाइनेंशियली लॉस, इसमें यू टर्न नहीं है। तो इसलिए कहते कृपया पहले से अलर्ट होकर के है ना ये गाड़ी चलाए। कौन सी गाड़ी? शरीर रूपी गाड़ी है? जैसे जो गाड़ी में डीजल पड़ता है उसमें आप पेट्रोल डालेंगे, जो फ्यूल से जो जरूरी है जिस गाड़ी में वही यूज करते हैं, है ना। जो ऑटो रिक्शा में डालते हैं वो फ्लाइट में डालेंगे, जो नॉर्मल मारुति कार में डालते हैं मर्सिडीज में डालेंगे। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी गाड़ी को मर्सिडीज बनाना है या मारुति कार बनाना है, क्योंकि इसमें कोई फिर यू टर्न नहीं है। और उसके लिए मेंटली हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, जिसमें ये जो साइन बोर्ड है नो पार्किंग, तो जहां पर इस टाइप के लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है या है ना ऐसे कोई रास्ता है जहां पर ये शॉप है, तो मेंटली आप वहां पे बोर्ड लगा दो कि मुझे मेरी गाड़ी वहां पार्क करनी ही नहीं है, ऐसे लोगों के बीच मुझे बैठना ही नहीं है। और ये चीजें ना पहले आपको फ्री में दी जाएगी, महंगी महंगी चीजें फ्री में दी जाती है, और फिर लत लग जाने के बाद कोई फ्री देता है? फिर खुद का ही यूज करो। तो मेंटली इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम सोचे नो मीन्स नो, फिर फ्रेंडशिप टूट जाएगी तो चलेगा? क्योंकि देखो मनुष्य जीवन में जो चीज नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगी, आज नहीं तो कल लोग आपको भले थोड़े समय के लिए वो आपसे दूर हो जाएंगे, फिर वो आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखेंगे कि देखो इन्होंने, हम दोनों साथ में पढ़े लिखे, साथ में बिजनेस किया, लेकिन मैंने ये शुरू कर दिया अल्कोहल, तो अभी देखो मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। फिर वो आपके पास आएंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखेंगे, आपको पूछेंगे अब मैं कैसे छोड़ू आप बताओ। तो ये है हमारा नाम मानशान। अब ये जो साइन बोर्ड है कि भी आगे रास्ता रफ है, रफ रास्ता है, वो रास्ते भी कहते हैं इंडिया में सारे रास्ते स्मूथ नहीं मिलेंगे, तो उसी तरह जीवन में भी चैलेंजेस तो आएगी, सबकी लाइफ में अलग अलग आती है। ऑलमोस्ट हम सब मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, थोड़ी थोड़ी सेम प्रॉब्लम होती है ना, तो क्यों ना मिलके सॉर्ट आउट करें। और बिना चैलेंजेस के लाइफ में मजा नहीं है, उस चैलेंजेस के टाइम पर हमें खुद को कूल काम रखना, पेशेंस, धीरज के साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर सपोज ऐसे बम्प वाले रोड है, रफ रोड है, और उसमें आप जिद करो नहीं मैं तो गाड़ी फास्ट ही चलाऊंगा, मुझे तो फास्ट ही पसंद है, मैं कोई स्लो नहीं करूंगा, ऐसा चलता है? उसमें वो जिद चलती है। कैसा भी व्यक्ति हो है ना, या कोई बड़ा व्यक्ति, उसको जल्दी पहुंचना है कहीं पर, तो वो बम पाएगा तो उसमें वो स्लो नहीं करेगा, ऐसा है? करना ही पड़ता है। तो जीवन रूपी परिस्थिति में भी कोई कोई ऐसी चीजें आती है जहां स्लो डाउन करना होता है, करना पड़ता है, उसी से हम मंजिल के समीप होते जाएंगे। और उसके लिए फिर स्पीड लिमिट, जैसे ये स्पीड लिमिट है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग ऐसे स्पीड लिमिट, कहीं पर आप 50 देखेंगे, कहीं पर 40, कहीं पे तो 20 लिखा होता है, आपको 20 नहीं चलानी है गाड़ी, उससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते है ना, पहाड़ी इलाका हो और उसमें भी कहाँ पर है ना कोई स्कूल है, हॉस्पिटल्स है या रेसिडेंट है। तो उसी तरह आपके जीवन में आपने अपने थॉट की स्पीड लिमिट कोई फिक्स किया है कि नहीं? नहीं किया है ना, अब तक नहीं किया। 60-70 साल बीत गए है ना, रफ रोड में भी कैसे कैसे गाड़ी चलाई, चली गाड़ी खराब हो गई, मेंटली भी हम कई बार डैमेज हो जाते हैं है ना, मेंटली जैसे स्ट्रेस ले लेते हैं है ना, फिर स्ट्रेस में कहते हैं कि अब मेरे से ना कुछ डिसीजन में नहीं ले पाऊंगी, मैं कैपेबल नहीं हूं अभी, मेरे से ये नहीं होगा। तो बार बार वो परिस्थितियों में हमने स्पीड अपनी सेम रखी, हम जीत पे उतर आए, हम तो चुप नहीं रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं और मुझे जो बोलना है हम बोल के रहेंगे। तो अगर स्पीड लिमिट वो नहीं किया, मेंटेन नहीं रखा, तो आगे जाके एक्सीडेंट होता है या खुद ही गिर जाते हैं, किसी और के साथ भी हो सकता है, पॉसिबल है, या कई बार कोई नहीं होता है, सामने पेड़ आ गया, हम खुद ही टकरा के गिर गए। तो मेंटली हम कई बार डैमेज होते 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 फिर ऐसे जीवन जी रहे हैं। और स्ट्रेस जब होता है, कोई टेंशन होता है, उसमें जो नेगेटिव थॉट आते हैं स्ट्रेस के टाइम, कोई ना कोई चिंता होती है उस टाइम पर, या कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस टाइम पर, हमारी थॉट की जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। और वो फास्ट जब हो जाए ना थॉट की स्पीड, तभी थॉट की क्वालिटी को चेक करना, वो क्वालिटी किस कौन से थॉट होंगे। उस टाइम पर नेगेटिव थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट की स्पीड ऑलवेज अंडरस्टूड है, वो फास्ट ही होगी। और जब हम पॉजिटिव थॉट शुरू कर देते हैं, तब स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है ना। स्पीड कम कैसे करूं वो नहीं सोचना है, मुझे इस बात पर ध्यान देना है कि थॉट की क्वालिटी पॉजिटिव है। बस पॉजिटिव कर दो थॉट को, तो क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है ना। थॉट की क्वालिटी चेंज और क्वांटिटी भी कम, थॉट कम स्पीड कम। तो वो कम थॉट जो होंगे, एक एक थॉट क्वालिटी वाले, तो वो हमें ताकत देते हैं, और नेगेटिव थॉट से ताकत कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति कम हो जाती है नेगेटिव थॉट से। और एक तो स्पीड भी ज्यादा, तो थॉट की क्वांटिटी भी ज्यादा, और उसमें से एक भी थॉट कोई काम के नहीं होते हैं। और कई बार तो हम ऐसा वाला नेगेटिव सोचते हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी होना ही नहीं है, ऐसा कभी होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, और वैसे वैसे चीजें हम सोच के बैठते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो पॉजिटिविटी कैसे लाए, हमारे सामने हर बात में दो चांस होते हैं, हर परिस्थिति में, हर बात में, हर परिस्थिति में, कि भाई या तो नेगेटिव सोचो या तो पॉजिटिव। हमारे एक भाई थे, एक्सीडेंट हो गया था उनका, और उनका एक हाथ काटना पड़ा था, तो हम बहने इतने ऐसे हो गए थे, बेचारे भाई, अरे एक हाथ, और वो टेलर थे, टेलरिंग का काम करते थे, तो हम लोग थोड़े वो हो गए कि अरे बेचारे, फैमिली में एक ही व्यक्ति कमाने वाला, उसका हाथ कट गया, अभी वो कैसे क्या करेंगे, जीवन कैसे आगे बढ़ाएंगे। और हम ऐसे दो तीन बहने उनसे मिलने गए हॉस्पिटल, और जाके देखा तो उनके कमरे का जो वाइब्रेशन थे बहुत लाइट हैप्पी हैप्पीनेस वाले थे, और सब आपस में परिवार वाले बैठ के मस्त हंसी कर रहे हैं, खुश थे सब। तो हम लोग भी उनको देख के ऐसे लाइट हो गए, खुश हो गए। तो और सिंपथी तो थी कि भाई को ऐसे हुआ नुकसान, तो वो भाई की आप देखो तो सही, उनके अंदर जो जोश था, उमंग उत्साह, जो पॉजिटिव थॉट थे उनके, उन्होंने कहा बहन मेरा लेफ्ट हैंड काटना पड़ा है, राइट हैंड तो मेरा अच्छा है ना, मैं राइट हैंड से कैचिक चलाता हूँ, तो ये तो मेरा अच्छा है, तो मैं भगवान का शुक्रिया कर रहा हूँ कि मेरा राइट हैंड बच गया। और उसी परिस्थिति में उनके सामने दो ऑप्शन थे, चाहे तो वो नेगेटिव भी सोच सकते थे, अरे अब मैं क्या करूंगा, एक हाथ कट गया, देखो ना भगवान ने मेरे साथ कैसा किया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, खराब काम करने वाले लोग मस्त घूम रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा हुआ। और दूसरा ऑप्शन ये था, तो उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया। तो हमारे सामने भी ऑलवेज हर परिस्थिति में दो ऑप्शन रहते हैं, अब आप कौन सा चूज करते हो आपके ऊपर है। और स्पीड लिमिट तभी भी बढ़ जाती है नेगेटिविटी, कहीं ईगो, जेलसी, गुस्सा, तो ये सारी चीजें हमारी थॉट की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और जहां ईगो है, ईगो वाला व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। अकेले ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है ना, बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, अकेला व्यक्ति बैठा है, ड्राइवर चला रहा है पर वो व्यक्ति अकेला है, तो मजा आएगा। तो ईगो एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को है ना, कहो कि पूरा का पूरा स्पॉइल कर देती है। और कई बार ईगो में तो हम सोचते हैं, जैसे यहाँ बताया है कि एजिंग गॉड आउट, भगवान को भी कुछ नहीं समझते हैं, है ना, खुद ही महान है, खुद को ही मतलब सारी चीजें खुद के हाथ में ले लेते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो हमारे ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है ना, उसमें भगवान की आवश्यकता है कि नहीं, कि भगवान के बगैर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा कर्म करने के पहले बाद में हम भगवान को ही कहते हैं प्लीज भगवान ये दिला देना, है ना, और मिल जाने के बाद थैंक गॉड, शुक्रिया परमात्मा का ये मिल गया, और अगर नहीं मिला तो भी शुक्रिया। कहते हैं ना, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है, थॉट की क्वालिटी दो ऑप्शन है, या तो आप नेगेटिव सोचो या तो पॉजिटिव सोचो। अगर वो चीज हासिल नहीं हुई, भले शुरुआत में हमने बहुत भगवान को याद किया या हमने पॉजिटिव भी सोचा, पर डेस्टिनेशन आने तक पता चला वो हमारा नहीं है, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, तो भी भगवान को थैंक्स, सीख मिली, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो ईगो अगर रखते हैं तो भगवान को भी जैसे कि हम आउट कर देते हैं, तो ऐसी लाइफ तो भगवान के बिगर की लाइफ वैसे कोई जीता तो नहीं है। भगवान को जैसे कई लोग कहते हैं मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो मानता ही नहीं हूं भगवान को, पर आप देखना उनको, कहीं ना कहीं वो लोग अपने दिल के अंदर हमसे ज्यादा भगवान को मान रहे होते हैं, खाली वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं भगवान पे, इसलिए ना ऐसे दिखा रहे होते हैं कि मैं तो कुछ मंदिर मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, है ना। फिर देखो उनके साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो वो अंदर ही अंदर कहते हैं थैंक गॉड अच्छा हुआ ये मिल गया, ये चीज अच्छी हो गई। तो ईगो वाला व्यक्ति जी नहीं सकता है भगवान के बगैर, तो कोई नहीं जी सकता है। और दूसरी नेगेटिविटी जो है जेलसी, जेलसी तो ऐसी चीज है कि जैसे आपने बहुत एक सुंदर पेंटिंग बनाई हो और उसमें फिर काले कलर का डब्बा आप खुद ही गिरा दो, ब्लैक कलर ऐसा खुद ही गिरा था। इतने समय से मेहनत कर रहे हो पेंटिंग की और आपने खुद ही गिरा दिया, दूसरे ने नहीं, तो कैसा रहता है? दूसरे देखने वाले लोग क्या कहेंगे, इन्होंने क्या काम किया, बुद्धू बना किया। तो जेलसी ऐसी चीज है, कोई आगे जा रहा है और हम जेलस हो रहे हैं, तो हम जैसे कि हम अपनी क्वालिटी को भूल गए, हम उसके साथ कंपेयर करने लगे और हमने खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो हमसे आगे है। अब ये एक कहते, कई लोग कहते हैं लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ गेम। तो रेस तो है, लेकिन क्यों ना ऐसी रेस हम करें जो सब साथ में मिलकर के जीते। अभी वो वीडियो मेरे पास नहीं है, एक बहुत सुंदर वीडियो था जो पैरालंपिक होती है वर्ल्ड में, जैसे वो ओलंपिक होती है ऐसे पैरालंपिक होती है, और जो पैरालिसिस वाले लोग हैं वो लोग काफी मेहनत करके उसमें गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल वो सब हासिल करते हैं। किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या क्या नहीं है। तो एक बार ऐसे हुआ, वो पैरालंपिक चल रही थी और उसमें जिनके पैर नहीं थे, आर्टिफिशियल पैर लगाए थे, उनका रनिंग रेस था। तो रनिंग रेस में लगभग 20 लोग थे और सबका अपना अपना पाथ था। जैसे ही विसल बजे सबने स्टार्ट किया, तो अभी नॉर्मल व्यक्ति कैसे दौड़ेगा और नकली पैर वाला कैसे दौड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी स्पीड थी, स्टार्ट किया सबने, तो कोई यहाँ पहुंचा है, कोई यहाँ पहुंचा है, कोई यहाँ है, ऐसे ऐसे। उतने में एक व्यक्ति गिर गया और उसका जो नकली पैर था वो भी अलग हो गया। तो जो लोग आगे पहुंच गए थे दौड़ के, वो लोग रुक गए वहां और कुछ लोग पीछे भी आ गए। फिर सारे के सारे पीछे आ गए और उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और सबने हाथ पकड़ के सबने साथ में दौड़े और वो रेड रिबन तक सब साथ में पहुंचे और पूरा स्टेडियम स्टैंडिंग ऑडिशन। कहते हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ कि पूरा स्टेडियम उठ करके इन लोगों का अभिनंदन कर रहा है। कहते ये लोग फिजिकली भले पैरालिसिस है, लेकिन जो फिजिकली ठीक है वो लोग मेंटली पैरालिसिस है और ये लोग मेंटली फिट है। ये लोग जो एक दूसरे को मदद करके, फिर जो जिसने पीछे आना शुरू किया था और मदद किया और फिर सबने एक दूसरे को देख के, तो उसको माइक दिया गया लास्ट में और कहा आप तो बहुत आगे जा चुके थे, आप पीछे क्यों आए, आप ये रेस जीत सकते थे, आप फलाना मेडल, इतना अमाउंट, ये सब आप जीत सकते थे। उसने कहा मैं अकेला जीत के मुझे अच्छा नहीं लगता था। अभी जो कहते मेरी जो फीलिंग है ना, वो शायद वो तभी नहीं होती अगर मैं अकेला जीत जाता तो। तो मेंटली वो लोग फिट है। तो जेलसी ऐसी चीज है कि हमारी क्वालिटीज को भी हम भूल जाते हैं। कोई आगे जा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। परमात्मा हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। हमारे भाग्य में जो है वो हमको मिलके ही रहेगा। कोई कितना भी छीनना चाहे छीन नहीं सकता, और किसी और के भाग्य में है वो हम छीनना चाहे तो नहीं छीन सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तू भी उनको मिलेगा क्योंकि उनके भाग्य में है और उनका समय आ चुका है, तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कोई आगे है कोई पीछे है। हमें जेलस नहीं होना है, हमें अपनी इनर क्वालिटी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जैसे ये साइन बोर्ड तो कई जगह पे होता है, सिर्फ रोड पे होता है ऐसा नहीं है, है ना? ये साइन बोर्ड है डेंजर का, और कहते हैं कि डेंजर में से अगर डी निकाल दो तो एंगर। तो जैसे कोई व्यक्ति भी गुस्सा करता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, जो ये साइन बोर्ड में दिखा है, ये चेहरे जहाँ पे होते हैं ना, इलेक्ट्रिक का बोर्ड होता है ना, या ऐसी कोई चीज होती है वहां पर हम ना कहते टच भी नहीं करना है, दूर चले जाते हैं। तो उसी तरह जो व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका चेहरा भी कुछ इस तरह का हो जाता है और उसमें भी लाल हो जाते हैं। तो व्यक्ति, दूसरे लोग हमारे से जरूर दूर होते जाएंगे, हमारे रिलेशंस मजबूत अच्छे नहीं रहेंगे। फिर बात आती है ओवरटेक करना। हम कई बार सोचते उन्होंने गुस्सा किया ना इसीलिए मैंने किया, तो किसी और के रोल को देख करके, सपोज एक ड्रामा चल रहा है और कोई व्यक्ति अपना रोल, अपने डायलॉग भूल गए, तो आप उसको याद दिलाएंगे कि आप भी भूल जाएंगे अपना डायलॉग? उसने अपने एक्टिंग को बिगाड़ा तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा। कवर करना माना जिस उनसे गलती हुई है वो छिपा लेगा, ये व्यक्ति अपनी एक्टिंग को और अच्छी बनाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं दूसरे को देख के हम गुस्सा कर रहे हैं तो ये बात ऐसी हो जाती है कि हम खुद की एक्टिंग को बिगाड़ रहे हैं उसकी एक्टिंग को देख करके। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। अब ये बहुत ही सुंदर बात है, जैसे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है तो ये दिखाता है कि हमें पेडेस्ट्रियल को पहले जाने का मौका देना है। अगर इसको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? कई बार हम क्या समझते हैं कि इनसे मेरी अच्छी बनती है या ये मेरे फलाने है, रिलेशन में ये है ये है, तो हम उनको आगे जाने देते हैं, उनको चांस देते हैं, आगे जाने का मौका देते हैं। लेकिन जिनसे हमारी नहीं बनती है उनको हम मदद भी नहीं करते, कुछ सिखाते भी नहीं है, उनको आगे जाने का ना कोई स्कोप भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बात है कि हमें दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना है जैसे वो है, हमें ऐसा व्यवहार करना है जैसे मैं हूं। कितनी बार खुद को चेंज करेंगे? हम समझते ये इगोइस्ट पर्सन है ना, उसके साथ मैं भी इगोइस्ट होकर ही बिहेव करूं, ये गुस्से वाले हैं इनके साथ मुझे भी गुस्सा वाला होकर ही व्यवहार करना है, अच्छा ये जेलसी वाले इनके साथ ऐसे, तो खुद को आप कितनी बार चेंज करेंगे? तो आपका खुद का तो कुछ पर्सनैलिटी रहा ही नहीं है ना, जैसे वो गिरगिट होता है ना, वो जिस तरह की चीज पे बैठता है वैसा अपना कलर बना लेता है, तो उसकी कोई ज्यादा बोलबाला नहीं है ना? उसका एग्जाम्पल भी लोग कहाँ लेते हैं, नेगेटिव बातों में। तो मैं जैसी हूँ वैसा मुझे व्यवहार सबके साथ करना है, सामने वाला जैसा भी रहने दो। तो ये चीज वो दिखा रही है। ये सिंबल अक्सर करके स्कूल्स के पास होता है। अब यहाँ बात है कि कुछ कुछ बातों में लाइफ में बच्चे जैसे बन जाना बहुत अच्छा है ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है ना, बच्चे जो होते हैं माँ बाप जो बोलते हैं ना वैसा कर लेते हैं। खैर पहले जमाने के बच्चे करते थे, आजकल के आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूरा एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातों में है ना, कहीं कहीं पहलुओं में, कोई परिस्थितियों में एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है। ज्यादा डीप में जाना, एनालिसिस करना, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना, ज्यादा सोचना ऐसा क्यों ऐसा क्यों, अरे आगे सस्पेंस है। आप ना, एक बात और यहाँ पे एक स्लोगन परमात्मा ने हमको सिखाया है समय के लिए, वेट एंड सी। बस ये दो शब्द खुद को याद दिलाएंगे ना, आपकी थॉट की स्पीड भी कम रहेगी, आपका क्वालिटी, थॉट की क्वालिटी लेवल भी मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों की तरह एकदम निश्चल बन जाना, हर चीज को एक्सेप्ट करना, इसमें बहुत मजा है। और जो फिर सस्पेंस मिलेगा ना, उससे आपको बहुत दुगुनी खुशी होगी। ये सिंबल दिखा रहा है कि होन पो प्रोहिबिटेड है। कई लोग अपनी बोलबाला खुद ही कर रहे हैं, खुद के बारे में खुद ही बताते हैं, क्या बताऊं, मैंने तो ये किया है, वो किया है, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, मैंने तो मेरी लाइफ में ये किया ऐसे। तो एक जनरल भी ना, एक ह्यूमन बीइंग की जो लॉज है, कहते भी खुद की बोलबाला खुद नहीं करो। कहते हैं कि एक बहुत सुंदर शायरी है, परिंदों को उड़ान, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। तो आपकी आपकी कर्म ही आपकी बोलबाला है। आपको साइलेंस में रह के बस आपके कर्म करते जाओ करते जाओ। आपके जो उसूल है, आपने जो बनाए है, आपकी जो खुद की क्वालिटी है, इनर पावर है, उस पे आप चलते रहो चलते रहो। एक समय आएगा लोग आपकी बोलबाला जरूर करेंगे। यहाँ पर बात है कि ये जो तीन कलर है, रेड कलर कहता है स्टॉप, अपने थॉट को है ना, जब बहुत ज्यादा स्पीड है स्टॉप हो जाओ। येलो कलर है सेल्फ रियलाइजेशन का, जो आगे ये तीन दिनों में आपके ये बहुत सुंदर सुंदर सेशन होने वाले हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, कि गॉड को हम अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड करें और रखें इंक्लूड, क्योंकि भगवान के बगैर हमारी लाइफ आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रीन कलर जो दिखाता है कि कैसे आगे बढ़े, तो परमात्मा, गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा कौन है, कैसे साथ रखे। और उसके साथ साथ तीसरा टॉपिक यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में मुख्य तीन विषय है, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन एंड थर्ड ऑफ कर्मा। जो हम कर्म करते हैं घूम फिर के हमारे पास आता है, ये आप मानो या न मानो ये फैक्ट है। कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं एक्सेप्ट करो, पर होगा तो वही, इसको कहते हैं फैक्ट। तो ये चीज हम सब मानते भी तो है कि हम जो कर्म करते हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं, मैंने इनको हेल्प किया ना तो आगे चल के यही व्यक्ति मुझे हेल्प करे बस, ऐसा नहीं होता है। ऐसी जिद हम नहीं कर सकते कर्म फिलोसॉफी के सामने। मैंने किसी को हेल्प किया है, कहते नेकी कर दरिया में डाला, जब हमारे हमें जरूरत होगी कोई ना कोई बंदा आके मदद करेगा। और जिनको परमात्मा पे ट्रस्ट है और खुद के कर्म को जिन्होंने पॉजिटिव ही किया है, तो भगवान किसी ना किसी को भेज देंगे आपको मदद करने के लिए। तो उसमें हम ये जिद नहीं कर सकते कि वही व्यक्ति मुझे मदद करे, क्योंकि मैंने उसको किया था, इस बात में ये जिद नहीं चल सकती है ना। इसमें परमात्मा पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये फेरी बोट, तो एक बोट चलाने वाला जो खिवैया होता है, नाविक होता है, आज एक रिक्शा ड्राइवर भी है, पायलट है, उस पे हम फेथ रख के बढ़ जाते हैं कि नहीं, कि मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा, कि कोई डाउट होता है पता नहीं कहाँ ले जाएगा, ये वाला नेगेटिव थॉट थोड़ी ना करते हैं, बैठते हैं तो अंडरस्टूड है और ये थॉट भी अंडरस्टूड चलता है, ये मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, इसका तो काम है मंजिल पर पहुंचाना। तो क्या परमात्मा हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? तो भगवान पे ट्रस्ट बहुत जरूरी है, वही हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे। और मंजिल यानी हम समझते सफलता, और सफलता यानी कोई ना कोई चीज अचीव हो जाए, नॉट नेसेसरी कि धन अचीव हो जाए या मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए, इसी को ही सफलता कहते हैं, ऐसा है ना? इसी को इसको सफलता कहते हैं, नो डाउट, पर इसी को ही सफलता नहीं कहते हैं। सफलता बहुत अलग अलग प्रकार की होती है और सफलता का वन वे है, एक ही रास्ता है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कर्मा एंड भगवान पर ट्रस्ट। तो आपको आपके जीवन में है ना, आप खुद ही आपके जीवन के पन्ने पलट के देखेंगे तो आप एकदम सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरी लाइफ मैंने अच्छी जिया है, मुझे जिस समय पर जो करना चाहिए था मैंने किया है। और ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जैसे नहीं, कई बार हमारे साथ अच्छा हो जाता है, जैसे कहा ना कि कम मेहनत में कुछ ज्यादा अचीव हो जाता है, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, जरूर कोई पिछले जन्म के पुण्य का फल होगा, या तो कुछ नुकसान भी होता है तो सर पे हाथ रख के कहते पता नहीं कौन से जन्म का मिला। तो जन्म भी तो मायने रखते हैं, पिछले जन्म का इस जन्म में मिल रहा है, मानते हो कि नहीं, तो इस जन्म का अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं। तो सपोज इस टाइप की जो स्थूल दिखने वाली सफलता ना भी मिले तो पेशेंस रखना, अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तो चलिए हम उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं। तो सभी साइलेंस में बैठेंगे, मन को साइलेंस कर दीजिए, खुद को देखिए, खुद के साथ बैठे, फील करें स्वयं को, कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूं, अपने अंदर के पांच पॉजिटिव संस्कार को याद करें, पांच क्वालिटी को याद करें, खुद के अंदर जाके ढूंढें कि मेरे कौन कौन से संस्कार अच्छे हैं जो मुझे भी पसंद है, दूसरों को भी पसंद है, स्वयं की पांच क्वालिटी अगर मिल गई हो तो परमात्मा का शुक्रिया करें। और परमात्मा के सामने ये प्रॉमिस भी करें कि इसी क्वालिटी को मैं आज से और बढ़ाऊंगा, इसी को हर कर्म में, हर परिस्थिति में यूज करते करते जीवन की इस यात्रा को सुखमय, शांतिमय बनाऊंगा। इसके लिए मुझे इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है शारीरिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, लोगों के साथ के रिश्ते मेरे अच्छे हैं, और आध्यात्मिक लेवल पर जो भी मुझे प्राप्त है उसका मैं तहे दिल से परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। उस ईश्वर के शुक्रिया के साथ साथ हम किरण बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से आपने लाइफ को कैसे हार्मोनियस बनाए वो हमने सीखा, मेडिटेशन का आनंद भी लिया।